हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 14। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैश्चिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षत पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कैर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामति, लभेत वासा हतनौरिवास्पदम्। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कैर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामति, लभेत वाता हतनौरिवास्पदम्। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कैर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामति, लभेत वाता हतनौरिवास्पदम्। ततोऽन्यथा किञ्चन जनन याजीव वक्षतः पृथक् दृशस्तात् कृतरूपनामभि न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिः लभेत वाता हतनौरिवास्पदम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तात् कृतरूपनामभि न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामतिः लभेत वाता हतनौरिवास्पदम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक् दृशस्तात् कृतरूपनामभि न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थितामति लभेत वाता हतनौरिवास्पदम्। शब्दों का अर्थ ततः अन्यथा, ततः मतलब उससे, अन्यथा मतलब पृथक, किंचिन अर्थात कुछ, यत जो भी, विवक्षतः वर्णन करने के लिए इच्छुक, पृथक अलग से, दृश्य अर्थात दृष्टि, तत्कृतः उसकी प्रतिक्रिया रूप रूप नामाभि नामों से न कर्हिचित् कभी नहीं क्वापि कोई च तत् दुस्थिता अर्थात दुस्थिता मति का मतलब होता है दोलायमान मन लभेत प्राप्त करता है वात आहत यानी वायु से प्रताड़ित नाव यानी नाव इव सदृश आस्पदम यानी स्थान। अनुवाद, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार दोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात दोलित करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रील वेदव्यास जी वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों से के संपादन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सत्काम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्ति। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत हैं कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह से स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्रील नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित वैदिक साहित्य की उसी त्रुटि के विषय में बल दे रहे हैं और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों यानी अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं, वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष की सींचने वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक उसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्री वेद व्यास जी को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संग्रह न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन के से आत्म साक्षात्कार में उपद्रव मच जाता है। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के स्वेच्छा विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद यानी बहु देवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाली है। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहु देवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। मूकं कुरु तु वाचालं अंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला सिकंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 14 अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें नारद मुनि वेद व्यास जी को उन्होंने जो वेद लिखे हैं उसमें जो त्रुटि रह गई है उसके विषय में अत्यंत ही गंभीरता से बता रहे हैं। वे कह रहे हैं ततो अन्यथा, अन्यथा का मतलब होता है पृथक यानी अलग, तत्व मतलब उससे, उससे तो किससे। यहाँ पर श्लोक नंबर 13 में उन्होंने कहा है, थर्ड लाइन, उरु क्रमस्या किल बंध मुक्तये। उरु क्रमस्या यानी अलौकिक कार्य करने वाले ईश्वर का जिसके विषय में श्रवण करके अखिल बंध मुक्तये यानी संपूर्ण जगत का भौतिक बहुबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी यदि हम भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, केवल एक भगवान के विषय में श्रवण करना ही हमारे भौतिक कष्टों का निवारण है, केवल भगवान के विषय में श्रवण करके ही हम बहुबंधन से मुक्त हो सकते हैं, केवल भगवान के विषय में श्रवण करके ही हम भौतिक आसक्ति से दूर होकर कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर नारद मुनि वेद व्यास जी से कह रहे हैं उससे पृथक भगवान के विषय में अगर नहीं है उससे हटकर, अन्यथा आपने कुछ भी बोला है, किंचन किंचन यानी थोड़ा भी अगर आप भगवान के टॉपिक से हटकर विवक्षता वर्णन कर रहे हो या वर्णन करने के इच्छुक हो, आप भगवान को छोड़कर कुछ भी यदि वर्णन कर रहे हो तो उससे क्या होगा। और भगवान के नाम रूप और गुणों को छोड़कर पृथक दृश्य तत्कृत रूप नाम भी, भगवान के नाम को छोड़कर अलग से जो भी नाम रूप और जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, तत्कृत है ना, तत्कृत का मतलब होता है उसकी प्रतिक्रिया। यानी आप यदि भगवान के विषय को हटाकर कोई भी विषय बताओगे अलग से तो उसकी प्रतिक्रिया क्या निकलेगी, उसका रिजल्ट क्या ना होगा कि न कर ही चित को आपी च दुस्थितामति। उसकी प्रतिक्रिया द्वारा मन जो है वो डोलने लगेगा, यानी कि मन जो है वो स्थिर नहीं बैठेगा ना। अगर आप कुछ और बता रहे हो, आप देवताओं के विषय में बता रहे हो, आप ना किस तरह से संसार में सुखी रहना चाहिए इसलिए बता रहे हो, आप कुछ और भी बता रहे हो कि ऐसा करना चाहिए जैसे हमें श्री प्रभुपाद जी ने बताया है यहाँ पर कि जिस तरह वेद व्यास जी जो है उन्होंने सारे वेदों में सारी चीजें बताई हैं, हर एक टॉपिक बताया है, हर एक चीज समस्त वर्णन जो है वो किए हैं, इसलिए उन्होंने जो बताया है उनकी अनुभूति ने जो वर्णन किया है उसमें बहुत अलग अलग टॉपिक आ गए हैं, जैसे सकाम कर्म, मीमांसा यानी जैसे मन से चिंतन करके कोई कार्य करते हैं, योग शक्ति भी है, भक्ति भी है, और ये सब बताने के अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे पुराणों में देवी देवताओं के विषय में बताया है ना, अलग अलग देवी देवताओं के नामों की पूजा करके हमें क्या प्राप्त होगा, और उसका उसके उससे इतना मतलब रुचिकर करके बताया है कि क्योंकि साधारण व्यक्ति जो है उसकी एक आत्मा है वो आनंद प्राप्त करती, अब आत्मा जो है इस भौतिक शरीर में जब गुणों के असर में आ जाती है तो फिर वो समझती है शरीर का सुख ही मेरा सुख है ये अज्ञान के कारण, तो जब उसे शास्त्र के अनुसार भौतिक भोग या भौतिक सुख मिलने की आशा दिखती है तो वो भ्रमित हो जाती है, तब बताया ना, न कर ही चित क्वापि चतुस्थिता मति, फिर उसकी मति समझती है वो ये अपने हृदय में ये सोचने लगता है जी कि इसी से तो कल्याण है, इसी से तो आनंद है, इसी से तो सुख है, फिर जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, ताकि उनको ऐसा लगता है कि फिर भगवान की सेवा करके क्या फायदा, जब मुझे भौतिक वस्तुओं या भौतिक सुख की प्राप्ति इन देवताओं की थोड़ी सी सेवा करके ही प्राप्त हो रही है, तो उनको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिखती है कि भगवान की भक्ति की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अज्ञान के कारण वो आत्म साक्षात्कार तो होता ही नहीं है, भौतिक शरीर तक ही टिके रहते हैं और भौतिक शरीर का सुख तो उन्हें देवताओं के द्वारा मिल रहा है, तो फिर उनका मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, और जब भगवान के साथ संबंध के विषय में नहीं पढ़ते नहीं जानते तो उनका अज्ञान और भी बढ़ जाता है, फिर आत्म साक्षात्कार करने का उनको सही मार्ग मिलता नहीं, क्योंकि शास्त्र में भी यदि उसको भौतिक सुख और आनंद ही प्राप्त हो रहा है तो फिर वो भगवान की ओर कब जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर बताया ततो न्यथा किंचन यद्व विक्षित, अगर आप भगवान से हटाकर कोई भी आनंद उनको प्रदान कर रहे हो जीवों को तो ये तो बहुत बड़ी त्रुटि है ना, भगवान से हटकर जीव कैसे संतुष्ट हो सकता है, कैसे सुखी हो सकता है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते नारद जी वेद व्यास जी की वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि पर विशेष बल दे रहे हैं, और इस तरह से प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर के संबंध में करने के लिए उनको कह रहे हैं कि हर एक आनंद को आप ये बताओ कि ये भगवान के कारण आपको प्राप्त हो रहा है, यदि भगवान से हटेगा तो जीव कभी भी आनंदित नहीं हो सकेगा, भले उसे भौतिक सुख कितने ही क्यों ना प्राप्त हो जाए। उसके बाद श्री प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में श्रीमद् भागवत महापुराण के ही एक श्लोक 4.31.14 के विषय में बताया है, अत्यंत सुंदर श्लोक है, यथा तरो मूल निशीचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। अच्युतेज्य यानी जो अच्युत भगवान श्री कृष्ण है, अच्युत भगवान श्री कृष्ण का नाम है, यानी जब अर्जुन भगवान को कहते हैं सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, यानी ऐसे भगवान जो कभी कोई मतलब उनके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं, वो सच्चित आनंद भगवान है, वो सत्य है, वही परम सत्य है, वो जो करते हैं वही सत्य है और जो उनके विषय में होता है वही सत्य है, तो जब उनके विषय में जो है केवल वही सत्य है तो फिर वेद व्यास जी को ये सब भ्रांत धारणा लिखने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वेद व्यास जी को क्या करना चाहिए था कि भागवत महापुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संग्रह ना करते, करना ही नहीं चाहिए था। अगर वो इतने सारे शास्त्र है, इसीलिए तो लोग इतने सारे भ्रांत हो गए। कोई बोलता है ये देवता मेरा कुलगुरु है, कोई बोलता है वो देवता मेरा कुलगुरु है, कोई बोलता है हम तो इसके हैं, हम तो उसके हैं, हम तो इसके हैं, हम भगवान के नहीं। भगवान से दूर होकर तुम किसी के नहीं हो सकते। ये जीव भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं ममाई व अंश जीव लोके। तो जब तक भगवान के साथ उसका संबंध निर्माण करके नहीं बताया तो फिर क्यों बताया? नहीं बताना चाहिए था। इसकी वजह से ही तो सब ये झगड़ा करा हुआ है। तो ये बता रहे हैं नारद मुनि कि भले भगवान ने इतने सारे देवताओं को बनाया है, उनका एक अलग अलग कार्य है, लेकिन उनको प्राप्त करके या उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके जीव कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मूल है। जिस प्रकार जब तक वृक्ष की मूल में जड़ में पानी नहीं डाला जाएगा, तब तक वृक्ष के पत्तों को भले कितना ही स्प्रे किया जाए या उन पत्तों को वृक्ष से अलग निकाल कर एक बहुत बड़े ट्रक में रखा जाए, पानी का ट्रक बड़ा हुआ हो, और उनको अनुकूल वातावरण, सूर्य प्रकाश और वायु प्रदान की जाए, लेकिन फिर भी वो सब पत्ते कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको उनकी मूल से, उनकी जड़ से अलग कर दिया गया है। और यदि संपूर्ण पत्तों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, केवल मूल में पानी देते हैं, यथा तरो मूल निशेचनेना, कि अगर आप तरो कहते हैं वृक्ष को और मूल कहते हैं जड़ को, कि अगर आप वृक्ष की जड़ में जल देते हो तो तृप्यन्ति, फिर तृप्त हो जाते हैं। क्या? तत्स्कंद भुजोप शाखा, जड़ तना पत्ते शाखे सब कुछ जो उसके वृक्ष के जो भी पार्ट्स हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार प्राणोपहारा चयथेन्द्रियाण, कि जिस प्रकार एक एक इंद्रिय को भोजन कराने की आवश्यकता नहीं है, अब बस मुंह में भोजन खाओ, पेट को प्राप्त हो गया, उदर को प्राप्त हो गया, तो समझो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी। कोई इंद्री आपसे कंप्लेन नहीं करेगी कि मुझे तो आज खाना नहीं दिया, कभी कोई उंगली बोलेगी, आंख बोलेगी, कान हो, नहीं, सबको संतुष्टि। क्यों? क्योंकि जो उसको वास्तविक जो तरीका है कि उसके उदर को भोजन प्राप्त हो गया, तो समझो संपूर्ण इंद्रियां संतुष्ट हो गई। तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज, उसी प्रकार संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण समाज, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण लोक वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। जब हम भगवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो फिर दूसरे सब देवी देवताओं की भक्ति के विषय में बताने की क्या आवश्यकता थी? आपको भगवान के अतिरिक्त कुछ और बताने नहीं चाहिए था। यदि जीव भगवान से थोड़ा सा भी दूर जाता है, रंच मात्र भी अपने पद से विचलित होता है, ये रंच मात्र पता है क्या है? कि भगवान के तीन फेस है ना, क्या? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। यदि भगवान के इन तीन फेसेस में भी जीव थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि वो उसको तत्व से नहीं देखता है कि वास्तव में मुझे क्या करना है, इनमें से क्या चॉइस करना है, ये दोनों फेस किससे का स्रोत क्या है, कि ब्रह्म भी भगवान का स्रोत है, भगवान कृष्ण साक्षात भगवान है, तभी उनका ये नूर है, ये तभी उनकी ब्रह्म ज्योति है, भगवान ही समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप है उन इसमें थोड़ा सा भी उपद्रव यदि हो जाता है, थोड़ा सा भी यदि विचलित हो जाता है, तो फिर जीव जो है वो भटक जाता है, फिर उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है, वास्तविक पद को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। जब वो एक भगवान के विषय में भी सोच रहा है, उसके तीन फेसों में वो यदि अंतर उसको लगता है, तो वो डायरेक्ट से अपने लक्ष्य को पहुंच नहीं पा रहा है, तो फिर तुम सोचो कि रंच मात्र विचलित होने से इतना सारा उपद्रव ये क्रिएट हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों की स्वेच्छा विस्तार के विषय में क्या कहा जाए? तभी तुम कभी है ना दूसरे देवताओं के विषय में बताते हो, कभी ज्ञान के विषय में बता रहे हो, कभी योग साधना के विषय में बता रहे हो, कभी कर्म कांड के विषय में बता रहे हो। क्या होगा ऐसे लोगों का? वैसे ही कलयुग के लोग हैं, वैसे उनकी मति इतनी भ्रमित है, उनके पास समय नहीं है, उनके पास आयु नहीं है, उनके पास अक्कल नहीं है, उनके पास सही मार्गदर्शन नहीं है, ये शास्त्रों पर के तो और भी ज्यादा भटक जाएंगे। और यही तो हो रहा है। श्रील प्रभुपाद ने इंगित किया है कि देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें सर्वेश्वरवाद यानी बहु देवतावाद का जन्म होता है, जिसकी प्रणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, है ना? कि जो इन शास्त्रों को पढ़ के अलग अलग भगवान अलग अलग देवताओं को भगवान समझकर उनका ही भजन करेंगे उनके विषय में, तो फिर सब अनेक बहु ईश्वरवाद जो होते हैं, बहु देवतावाद, कि ये भी आप इसकी भी पूजा कर इसकी भी कर सकते हो, किसी न किसी पद पर लगा हुआ है। और यही तो हो रहा है, सब भ्रांत हो गए हैं इसके कारण। वो समझते हैं कि ये भी तो भाई इस शास्त्र में तो इस देवता के विषय में लिखा हुआ, इस शास्त्र में तो इस देवता के विषय में लिखा हुआ, इसमें तो ये सब वेदों से निकली हुई बातें हैं, अलग अलग छोटी छोटी पुस्तकें बना के बता दी हैं कि भाई ये देवी देवता आपके सारे कार्य जो है वो पूरे करेगा, ये पूरे करेगा। तो फिर इससे क्या हुआ है कि धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति, ऐसी ऐसी धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देशन करने वाले हैं। कि जीव को वास्तव में क्या बताना चाहिए कि देखो, तुम्हें भले भौतिक सुविधाएं कितनी भी प्राप्त हो जाए, तुम तब तक संतुष्ट नहीं हो जाओगे जब तक के तुम्हारा संबंध भगवान के साथ नहीं जोड़ोगे। क्योंकि आत्मा को सुविधाओं से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, केवल सुख भी आत्मा को आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा इज सीकर ऑफ लव। आत्मा को प्रेम चाहिए, वो प्रेम चाहती है। अभी एक जैसे एक व्यक्ति हो, आप देखो उसको आप है ना संसार का सबसे बड़ा बंगलो खरीद के दे दो, है ना, उस बंगलो के अंदर दुनिया का हर ऐश हो, हर आसाइश हो, हर एक सुविधा हो, लेकिन उस बंगलो में उससे प्रेम करने वाला कोई नहीं हो, कोई जीव नहीं हो, उसे समस्त सुख का भौतिक शरीर मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली उसको हर सुविधा प्रदान करो, लेकिन उसको कोई चाहने वाला ना हो, उसको कोई प्रेम करने वाला ना हो, प्रेम का आदान प्रदान ना हो, तो क्या वो संतुष्ट हो सकता है? ये इसलिए है क्योंकि आत्मा प्रेम के बगैर नहीं रह सकती। और प्रेम हम जब प्रेम का शब्द आता है, क्योंकि हमारी भौतिक मति इतनी घटिया है कि हम उस पवित्र प्रेम के विषय में सोच नहीं पाते हैं। वही भौतिक जो वासना है उसी के विषय में सोचते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ कह दिया, निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नामक काम। खबरदार जो तुम इस गलत फहमी में रहे कि तुम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हो और उसको तुम प्रेम का नाम दे रहे हो, वो वासना है, वो हवस है, दैट इज जस्ट लस्ट। वो तो काम वासना है जिससे तुम्हारे अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हो तुम, वो प्रेम नहीं हो सकता। और इस संसार में देखा जाए तो संपूर्ण जो जिसको हम प्रेम कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काम ही है, वो प्रेम का विपरीत रूप है। और प्रेम का क्या अर्थ है? महाप्रभु कहते हैं, कृष्णेर इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेमना। यदि आप कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हो तो ये वास्तविक प्रेम है। तो जब तक आत्मा को इस वास्तविक प्रेम की अनुभूति नहीं होती है, तब तक उस भौतिक शरीर में भले उसको कोई कष्ट नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि क्योंकि इस संसार ये दुखों का सागर है, इसलिए हम दुखों से बचने के लिए भगवान को प्राप्त करें, लेकिन यदि ये संसार दुखों का सागर नहीं भी होता तो भी इसमें इटरनल लव प्राप्त नहीं होता, तो आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। तो फिर केवल भागवत महापुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़कर हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागरूक कर सकते हैं, तो फिर दूसरे शास्त्रों को लिखने की क्या आवश्यकता थी जिसमें भगवान के प्रेम के विषय में नहीं है बताया गया। तो फिर ये तो उस संबंध को, ये जो भागवत धर्म का जो सिद्धांत है उसकी उन्नति के लिए घातक होंगे, है ना। वो तो प्रेम को और भी पीछे कर देंगे और भौतिक वस्तुओं में घूमता रहेगा जीव। और यहाँ पर अंतिम लाइन में नारद जी ने कहा कि तुमने अब जीव को ऐसे बना दिया जैसे लभे तवाता हतनौरी वास्पदम, के एक जैसे आश्रय विहीन नाव, यानी कि उस नाव को चलाने वाला कोई है नहीं और वो बीच भंवर में है, और चक्रवात जब आता है मतलब बहुत भवंडर आ जाता है फिर क्या करती है वो नाव, कभी उधर जाए कभी उधर जाए कभी उधर जाए कभी उधर जाएगी, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं है, उसका एक लक्ष्य भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे जाना किधर है, तो वो भटकती रहेगी। उसी तरह जीव भी तो भटकता जाएगा, जीव इतने सारे देवताओं के मध्य में इतना विचलित हो जाएगा कि कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर ही नहीं सकेगा। ये चीज भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 44 में अत्यंत सुंदर तरीके से बताया है। भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, यानी जो जीव भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होता है तो तयापहृत चेतना, जो उसकी चेतना है, जो वो इतना उसका जो चित्त होता है वो आसक्ति जो है वो उसकी ऐसी वस्तुएं उसकी चेतना को उसके चित्त को इतना मोहग्रस्त कर देती है, हरत उसकी वास्तविक चेतना जो कृष्ण भक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस है उसको वो हरण कर देती है। और व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधान न विधीयते, जो दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि केवल भौतिक इंद्रिय सुख ही प्राप्त करेगी करना चाहेगी, क्योंकि उसकी बुद्धि तो हरण चित्त तो हरण हो गया है, मतलब विचलित हो गया है, इतना ज्यादा भोगों के प्रति इतना आसक्त हो गया है, तो समाधान विधि थी वो भगवान के प्रति भक्ति का निश्चय कभी नहीं कर सकती, वो भगवान के प्रति वन पॉइंटेड कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बुद्धि जो है वो बहु शाखाओं में विभाजित हो गई है। और भगवान ने 41 में इस चीज को क्लियर किया, भगवान ने कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना, कि जो वास्तव में व्यवसाय बुद्धि होती है यानी वन पॉइंटेड होना चाहिए उसको, एकेह कुरु नंदना, बस एक ही उसका लक्ष्य होना चाहिए, उसका प्रयोजन भी एक होना चाहिए, उसका लक्ष्य भी एक होना चाहिए। और अगर उसका लक्ष्य एक नहीं है, लक्ष्य एक क्या होना चाहिए, केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और कुछ भी प्राप्त हो वो मुझे नहीं चाहिए, है ना। आश्लिष्य वा पादरतम विनष्ट माम अदर्शनम मर्म हताम करो तो, तुम मुझे चाहे जो भी दो, सुख दो दुख दो प्रेम करो धिक्कार दो, लेकिन मैं केवल तुमसे प्रेम करता रहूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सौंदर्यम कविताम वा जगदीश कामय, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वये। मुझे ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना अच्छा जन्म चाहिए, ना ही कोई और वस्तु की, और ना ही अपने अनुयायी जो मेरी प्रशंसा करें उनकी आवश्यकता है, मुझे तो केवल और केवल तुम्हारी प्रेम भक्ति की आवश्यकता। तो यदि ऐसी वन पॉइंटेड बुद्धि होगी तो ही वो भगवान को प्राप्त कर सकेगी, क्यों, क्योंकि बहुशाखा नमताश बुद्धयो अव्यवसायी नम, जिनकी बुद्धि वन पॉइंटेड नहीं होती है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि तो अनेक शाखाओं में विभाजित होती है, उनको तो अपना लक्ष्य ही पता नहीं होता है, तो फिर वो कैसे आत्म साक्षात्कार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपने उनको ऐसा मार्ग दिया है क्यों, उनको आपको खाली भागवतम महापुराण या भगवान के विषय में बताना चाहिए था। तो आज नारद मुनि अपने शिष्य वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो संपूर्ण वेदों के रचयिता है, भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। फिर भी जब तक उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश को पाकर कार्य नहीं किया, तब तक वो गलती कर बैठे, है ना। तो हम जैसे साधारण व्यक्ति जो कि हम कैसे अपने मन से अच्छा या सही कार्य, सही डिसीजन ले सकते हैं, जब तक गुरु महाराज के आदेश नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु के आदेश अनुसार हम कार्य नहीं करेंगे तो हम अवश्य गलती कर बैठेंगे। इसे वेद व्यास जी आज अपने शिष्य को, शिष्य के माध्यम से, ये तो भगवान का एक, ये तो भगवान जो है एक लीला होती है जिनके माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि हमें हमेशा एक बोनोफाइड स्पेशल मास्टर जो होते हैं हमारे शुद्ध सतगुरु के अंडर में रहकर कार्य करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, जैसे वो बताते हैं वैसे ही हमें कार्य करना चाहिए। यदि हम अपने मन से कुछ करेंगे तो भले हम अच्छा करने के लिए भी सोचेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी, लेकिन जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु हैं, उनके अंडर में रहकर हमको कार्य करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं नारद मुनि ततो न्यथा, अगर तुमने उसके अतिरिक्त किंचन यद विवक्षिता कुछ भी बता दिया है तो न कर हिचित वापि स दुस्थिता मति, तो फिर इससे जीवों की मति जो है वो इसी तरह से विचलित हो गई है। लभे तवाता हत नौ रिवास पदम, कि जिस प्रकार भवंडर में और आश्रय विहीन जो नाव होती है वो कैसे चक्रवात में घूम रही होती है, इसीलिए इसी प्रकार आज के जो जीव हैं वो भी वेदों के पढ़ने से, अलग अलग शास्त्रों के पढ़ने से इतने विचलित हो गए हैं कि उनको अभी ये भी समझ में नहीं आता है कि वास्तविक भगवान को नया में किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, और वो अलग अलग देवताओं को ही भगवान समझ कर उनकी पूजा कर रहे हैं। तो आगे नारद मुनि और भी अभी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ यही बताएंगे कि तुमने क्या क्या किया और तुम्हें क्या करना चाहिए था। तो हम भी इसके विषय में सुनेंगे और फिर उसी, क्योंकि हमारे लिए आदेश है कि हमें जब भी बात करें तो डायरेक्ट से केंद्र किसको करना चाहिए, कृष्ण को करना चाहिए। अगर हम जरा सा भी अपने पद से हट के बात करें, इसीलिए श्री प्रभुपाद के देखो जो भी लेक्चर को आप सुनोगे ना डायरेक्ट से पॉइंट किया जाएगा कृष्ण, कृष्ण भक्ति, आप आत्मा हो, आप भगवान के अंश हो, आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये पॉइंट को लेकर अगर हम आगे चलेंगे तो कोई भी जीव को कहां से भी वो सुनेगा तो वो वन पॉइंटेड हो जाएगा, लेकिन अगर और मसाले उसके अंदर मिक्स करते जाएंगे ना तो फिर उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, पता ही नहीं क्या करना है। लेकिन ये हमें शास्त्र श्रील प्रभुपाद जी का इतना उपकार है कि हमको एक रास्ता तो दे दिया कम से कम कि इधर जाना है आपको, यही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इस महामंत्र का उच्चारण करते रहेंगे और श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करते रहेंगे तो अवश्य हम अपने अपनी वास्तविक जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति को अवश्य प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा।